जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन मिचरे हमारी ध्यान। मंगलाचरण में पांच गाथाओं का उपयोग आचार्य कुंदकुंद देव ने किया है प्रचन सार में। उसका अर्थ अपन ने दो तीन दिन में लगातार कई दफे पढ़ लिया है। जिन जिन को उन्होंने नमस्कार किया है वो सब मिलाकर पंच परमेष्टि के घेरे से बाहर नहीं निकलते। इसका अर्थ ये हो गया कि परम पूज्य अष्टद्रव्य से पूजन करने योग्य पंच परमेष्टि ही है। अष्टद्रव्य से पूजन करने योग शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि उससे हमारी दृष्टि में जल्दी समझ में आ जाता है। हमेशा कहें सभी पूज्य पुरुष आ जाते हैं उसमें, तो उसमें ये संकट खड़ा होता है कि माता पिता आएंगे कि नहीं, और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है तो एक दो छंद हम उनके भी लिख दें तो क्या तकलीफ है। हमारे गुरु हैं जिनने हमें ये पढ़ाया है, धर्म पढ़ाया है, समय सार पढ़ाया है। गुरुदेव श्री ने तो पढ़ाया ही है, और लोग भी तो पढ़ा सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि शांति कुमार पाटिल इतना बढ़िया समय सार पढ़ाते हैं कि मैं निरंतर जब भी जयपुर में होता हूं तो एक दिन भी उनके व्याख्यान को नहीं छोड़ता हूं। कोई भी पढ़ा सकते हैं ना। गुरुदेव बहुत महान है अपनी दृष्टि से, फिर भी जो शास्त्रीय मर्यादाएं हैं हमने जो बनाई हैं उनके हिसाब से तो एक ही मर्यादा में आते हैं ना, उसी में वो शांति पाटिल हो, उसी में पूज्य गुरुदेव श्री। जब हम उसमें कैसे विभाग करेंगे, लेकिन हमारे चित्त ये कभी स्वीकार नहीं करता कि हम अपने माता पिता के लिए भी दो छंद लिख दें उसमें मंगलाचरण में। यहां तक कि हमारे लोग जो अध्यात्म विद्या को पढ़ाने वाले ग्रस्त गुरु हैं, ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, उनको भी लिख दें, ये भी हमारे यहां मान्य नहीं है, लेकिन कोई छूट भी न जाए। अब हमारा अज्ञान इतना गहरा है कि हम कुछ ज्यादा कोई बात सुनना और समझना ही नहीं चाहते। पूजने पांच प्रकार की होती हैं, सुनी होगी कभी, एक नित्य नियम पूजन, फिर आष्टांगिक पूजन, फिर कल्पद्रुम पूजन, फिर इंद्रध्वज पूजन, ऐसी पांच प्रकार की होती हैं। जो रोजाना करना अनिवार्य हो वो नित्य नियम पूजन, अष्टांग का में अनिवार्य हो वो आष्टांगिक पूजन, फिर जो इंद्रियों के द्वारा की जाती है ध्वजा चढ़ा करके वो इंद्रध्वज पूजन, फिर चक्रवर्ती के द्वारा जो की जाती है वो कल्पद्रुम पूजन है ना। ये सब अकीर्तन चैत्यालय वगैरह की वंदना वगैरह की होती हैं। तो अपनी एक पूजन है जो नित्य नियम है। नित्य नियम का अर्थ क्या, कि जो हमें रोजाना करना अनिवार्य है, जिनकी पूजन हमें रोजाना करना चाहिए, तो अब इसकी मर्यादा क्या बनाए। तो मर्यादा वो ये पंच परमेष्टि। मैं कोई बड़ी बात कहना चाहता हूं इस माध्यम से, माने पंच परमेष्टि से आगे बढ़कर कोई पूज्य नहीं है इस नित्य नियम पूजन में, जो जिन पूजन की हम बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने अष्टद्रव्य से पूजन की बात करी थी। अष्टद्रव्य से तो नहीं कह सकते, अर्घ तो चढ़ा सकते हैं, अकेले जल से तो कर सकते हैं, ऐसा तर्क मत खोजना। मन जो साक्षात धर्म के मार्ग में हम ग्रस्तों के द्वारा पूज्य हैं वो पंच परमेष्टि हैं। हम तो सब पुजारी हैं, तो नित्य नियम माने क्या? तो उसमें देव सास गुरु की पूजन आती ना, नित्य नियम पूजन में एक देव सास गुरु की पूजन। तो देव में सब अरहंत और सिद्ध आ जाते हैं, गुरु में आचार्य उपाध्याय और साधु आ जाते हैं। और अब इन दोनों की वाणी, वो जिन वाणी शास्त्र में आ जाती है, अरहंत भगवान की वाणी भी और गुरुओं की वाणी भी, आचार्यों ने भी जो लिखी है सर किताबों में भी। तो देव सास गुरु पूजन में ये पंच परमेष्ठी जितने पूज्य हैं वो सभी आ जाते हैं। कल मैंने आचार्य कुंद देव के मन के विकल्पों का जो उनके खड़े हुए थे वो आपके सामने प्रस्तुत किए थे कि फिर उन्होंने ये सोचा, फिर उन्होंने ये सोचा, फिर ऐसे सोचा। क्यों? जैसे मेरे से प्राइवेट में सब बता गए हूँ, मैंने अपने दिमाग से निकाल कर वो सारे प्रश्नोत्तर आपके सामने रखे थे। अब हम अपनी स्थिति पर थोड़ा विचार करते हैं कि देव सास गुरु पे आ जाना चाहिए। फिर हम आखिर तुम चैत्यालयों के अर्घ भी चढ़ाते हैं, उनकी बात हम थोड़ी बाद में करेंगे, समझे ना। फिर जिन मंदिर को भी अर्घ, तीर्थ क्षेत्रों को भी देते हैं, वो सब बाद में चर्चा करेंगे फिर। लेकिन पुरुषों में, जीवों में उसके आगे नहीं बढ़ते हैं, वो सब जीव नहीं है, समझ रहे ना। उनकी क्यों है, क्या है, कैसे है, फिर चर्चा करेंगे। अभी तो ये पंच परमेष्ठी आ जाए। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि हमने देव सास गुरु की पूजन कर ली, अब एक भाई के मन में विकल्प आया कि भाई सिद्धों की पूजन तो होनी चाहिए, नित्य नियम में सिद्ध की तो होनी चाहिए, तुम्हें समय नहीं है तो अरे चढ़ा दो, लेकिन सिद्ध पूजन तो होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि हमने जिस देव सास गुरु की पूजन की उसमें सिद्ध आए कि नहीं आए? तो फिर हमको ये विकल्प क्यों आता है सिद्धों की जरूर होनी चाहिए हैं? फिर कहते कि नहीं नहीं, विद्वान ऋषि संगणों की तो होनी चाहिए, वे तो विद्वान है। कुंद ने भी विद्वान को स्पेशल से लिया है क्यों? और श्रीमंदर स्वामी तो विशेष ही है उनमें। अब विशेष कैसे हैं जब बीस ही के बीच विद्वान हैं, और जम्मू द्वीप के चार जो विधेय हैं उनमें चार, तो कोई दूरी और पास की भी कोई बात नहीं है। बस हमने एक श्रीमंदर स्वामी का नाम पकड़ लिया है पहला नाम, क्यों? तो बस वहां देंगे श्रीमंदर स्वामी की प्रतिमा होना पूजना चाहिए। नहीं चलो इकट्ठी कर लो 20 तीर्थंकर पूजना। लेकिन मैं पूछता हूँ ये 20 तीर्थंकर अरहंत परमेष्ठी हैं कि नहीं? तो ये पंच परमेष्ठी में आए कि नहीं आए? देव सास गुरु में आए कि नहीं आए? फिर हमको और विकल्प आता है कि नहीं नहीं पारसनाथ की तो करनी पड़ेगी, सम्मेद शिखर से तो पारसनाथ की मुख्यता है। क्या की मुख्यता है? 20 तीर्थंकर गए हैं वहां से मोक्ष हैं, वो ठीक है गए हैं, लेकिन पारसनाथ की बात है। आगे पहाड़ी का नाम पारसनाथ हिल है, वो इतिहास वालों ने भी मान लिया है उन्हें। अच्छा, तो पुराण वालों की जो कई बातें झूठी हैं, इतिहास वालों की सच्ची हैं। फिर किसी न किसी तरह से पारसनाथ का नंबर लगता है तो गुजराती लोग चिल्लाने लगते हैं, अच्छा तुमने अपने पारसनाथ बनारस वाले यूपी वाले तो रख लिए, हमारे गुजराती भगवान छोड़ दिए। कौन था गुजराती भगवान? कौन है मालूम? मीनाथ मालूम, सबको कहते नहीं होगा। गिरनार से मोक्ष गए क्यों? सारा द्वारका में हुआ जो कुछ होना था। तो मेरे कहने का मतलब फिर नैमिनाथ, अब ऐसे कर करके फिर सब तीर्थंकर आ गए, फिर और आ जाएंगे। तो इस तरह से हम देव में नहीं, समझेगा। यदि हमारी समझ में आ गया होता कि देव का खाता कितना लंबा चौड़ा है, उसमें कौन कौन आ गए हमने पूजा किए हैं, तो हमको ये विकल्प नहीं सताते और हमारी ये लंबी लंबी लाइन नहीं बढ़ती। रोजाना जो ये आचार्यों ने कहा कि आध घंटा पूजा कर लो और आध एक घंटा स्वाध्याय कर लो, डेढ़ घंटा निकालते हो तो धीरे धीरे वो पूजा ही बढ़ती जाती और वो स्वाध्याय को समय ही नहीं बचता। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं तो शास्त्र में इनमें उनमें क्षेत्रों में जगहों में ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम बहुत लंबी लाइन खड़ी कर देते हैं। और हमारे इस अज्ञान की का प्रमाण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। युगल जी साहब ने जो देवसाद गुरु की पूजन बनाई थी उसके साल छह महीने बाद मैंने भी बनाई और लोगों ने भी बनाई। एक हमारे ही मित्र साथी हम एक साथ स्वाध्याय करने वाले ब्रह्मचारी सच्चिदानंद जी थे, सरोंज के थे, बिरसा के पास ही सरोंज है ना, तो वो बोले कि मैं तुम दोनों को फैल ना कर दूं तो मेरा नाम नहीं। मेरी उनसे बात हुई, हमारा ऐसा खाता चलता था, यद्यपि उनकी उम्र मेरे दादाजी की उम्र के बराबर थी लेकिन तब तो चर्चा में साथ रहते थे ना। मैं 19-20 वर्ष का था और वे थे 60-70 वर्ष के, और भी ज्यादा होंगे। तो क्या भैया कैसे हमें क्या फेल कर दोगे तुम, कि मैं ऐसी पूजा बनाऊंगा देवसाद गुरु की कि सब लोग तुम्हारी पूजन करना युगल जी की पूजन करना भूल जाएंगे। मैं कह इसमें जीत हार का क्या बात है, देवसाद गुरु की पूजन तो करेंगे ना क्या। तो उनने बनाई एक पूजन, आप सबको याद है, बोलो जरा दो पंक्तियां। देव सात गुरु को ध्याऊं और विद्यमान श्री भीष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। लोगों को समझाया कि देखो इनकी पूजा करोगे तुम तो अकेले देव सात गुरु आएंगे, पर सिद्ध की तुम्हें अलग करनी पड़ेगी, विद्यमान भीष तीर्थंकरों की अलग करनी पड़ेगी, चार पूजने तुम्हारे माथे मर जाएंगे। मैं बताता हूं तुम्हें क्या क्या बोलते हो, बन थ्री बन बेरे थ्री इन बन, मैं आपको थ्री इन बन पूजन देता हूं। अरे भाई हमारी पूजन भी थ्री इन बन ही है, उसमें भी वे सब आ गए, अरहंत भी आ गए, सिद्ध भी आ गए, कोई कुछ छूटा नहीं है, लेकिन ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है क्या कि हर एक आदमी अपने उससे निकाल सके। अकल की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने जरा सा बताया तो अब आपके ख्याल में आ गई ना बात है? और सब करने लगे ये मुमुक्षु भी सैकड़ों सिर्फ इसी मुहे में अरबों पूजन करने लगे। मैं ये नहीं समझा रहा हूं कि वो मत करना और ये करना, मैं तो सिर्फ ये बताता हूं कि हम तो दोनों साथ साथ बैठते थे और वे अपनी समझाते थे, मैं अपनी बात समझाता था, दोनों बात एक साथ भी समझाते थे और हंसते थे। बोले तुम कितने ही प्रवचन करो, प्रवचन पूजन का जो महत्व है, पूजन का जो प्रभाव है योगेश, वो अभी प्रवचन नहीं जमा पाया है। कितना बढ़िया करो तुम, कितना ही लोकप्रिय हो, लेकिन जितनी ताकत पूजा में है इतनी ताकत उसमें नहीं है। हम कहेंगे एक पूजन करनी है खड़े होके, कौन करेगा, 1,01,000 रुपया, तुम बोलो बड़ो बड़ो बड़ो, तो 5-10 लाख रुपया एक पूजन करने के लिए दे देंगे, बोली लग जाएगी। सीतामढ़ी में तो और गजब है, वहां तो एक पूजा में भी जल पूजा चंदन पूजा ऐसे होता है कि जल पूजा की बोली, बस तुम्हें अकेला पानी चढ़ाने को मिलेगा, चंदन चढ़ाने को मिलेगा और उनकी कड़ोरों में जाती है। मैंने दोनों देखी है ना अपने आंखों से। और तुम जरा बोलो कि मेरे प्रवचन में जो आगे की लेन में बैठेगा वो उसके 5 रुपया तुम्हें नहीं देना है, मैं दूंगा तुम्हें। आज तक तो हम नहीं कर पाए, क्यों कि हम अपनी संख्या इस दम पर बढ़ा पाए हों, यानी उसकी ताकत कितनी है। और सचमुच वो मुमुक्ष में ऐसे मेरे ऐसे व्याख्यान कई सुन लिए, अभी आपने सुन लिया, फिर भी कल आप वो ही करेंगे। नहीं करना ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे माथे गलत नहीं मरना, मैं तो सिर्फ वो स्वरूप बता रहा हूँ कि वस्तु का हमारा अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं। और उस चक्कर में क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे वे थोड़ी सी कह देता हूँ, 5 मिनट नाराज मत हो जाना, फिर मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। फिर भगवान बड़े एक जिन्हें अपना कौन भगवान महावीर, मैंने अपने जो भगवान क्या बोलूं, पहले वो अरहंत परमेष्ठी, पहले अरहंत परमेष्ठी, फिर नव देवता करना हमको, तो फिर दूसरी उनकी मूर्ति। अब एक भगवान अरहंत और दूसरी उनकी मूर्ति और तीसरे उनका जिस मूर्ति जहां विराजमान है वो मंदिर, तो मंदिर भी एक देवता, मूर्ति भी देवता, और वो भगवान भी जिनकी मूर्ति है वे भी देवता, तीनों देवता एक सही हो गए ना। ऐसे 9 है, घबराना नहीं, मैं लंबा नहीं जाना चाहता हूं। अब तीनों एक से हो गए, एक भगवान के चरणों में तो हम माथा झुकाते हैं, उनकी मूर्ति के भी भगवान समोषण यहां बैठे हों, और मैं आपसे पूछूं कि आप मंदिर में पूजा करने के लिए बैठे हैं बहुत से लोग, तो जैसे भगवान साक्षात बैठे होते तो आप वैसे बैठ सकते थे? बोलना भैया क्या नाम है तुम्हारा, जो भी होगा, लेकिन यदि तुम साक्षात अरहंत भगवान के समोषण में बैठे होते तो ऐसे बैठे होते? मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हमारे में फर्क है। बात तो वो ही कह रहा हूं मैं भी, मैं ऐसा कह के मैं भगवान हूं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन ये मेरे कहने का मतलब वो मूर्ति और मूर्ति के बाद वो मंदिर, एक के चरणों में हम अपना माथा रखते हैं और दूसरे की छाती पे अपना पैर रखते हैं। मंदिर में जाते हो ना, प्रवेश करते हो कि नहीं, तो गर्भगृह में जाते हो तो अपने पैर रखते हो, भले ही धो के अच्छी तरह से साफ करके, लेकिन रखते तो हो ना। कैसे दो देवता कैसे हो गए जी, क्या करें? हिंदुओं के 9 देवता होते थे, वे बहुत काम करते थे, 7 ग्रह को निपटा देते थे, और अगल बगल के 2 और विज्ञान ने निकाल दिए, मैं पे चू क्या है, देखो है ना राहु केतु वगैरह तो पहले है, सूर्य चंद्र वगैरह, और उन्हें और निकाल दिए, तो वो काम निपटा देते थे, अपने पंच परमेश्वरी जरा कम पड़ जाते थे। इसलिए अपन को भी 9 की संख्या तो पूरी करनी थी, नव ग्रह तो हम कह नहीं सकते थे, तो हमने नव देव हमें कहना जरूरी था, अब देवों की गिनती गिनानी थी, और इससे मजा पंच परमेश्वरी से आगे निकलना नहीं था, तो हमने फिर मूर्ति, फिर जिन मंदिर, फिर जिन वाणी, मैंने अजीब वो जीव के साथ अजीब उन्हीं के नाम पर लगा लगा करके, और हमने आके 9 संख्या पूरी कर ही दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा पूजा पाठ संबंधी बिल्कुल सरल चीजें हैं, उनके संबंध में भी हमारा विवेक काम नहीं करता, हम उसके अर्थ पर गंभीरता से विचार नहीं करते, है ना। तो ये जो पंच परमेष्ठी पर जो उन्होंने नमस्कार किया, तो 5 गाथाएं लिखी कि लौट फिर करके वो पंच परमेष्ठी के बाहर नहीं निकले। कितनी बार मुझे पुरानी उन 5 गाथाओं के बारे में कहने थी, अब आगे बढ़ते हैं। अंत में जो पांचवी गाथा थी तो उनने कह दिया कि मैं इन सबको नमस्कार करके पृथक पृथक अलग अलग अकेले में एकांत एक एक करके नाम लेके सब तरह से मैं करने के बाद अब मैं अपने आश्रम में जाता हूँ और साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ। माने अब ये विकल्प के जाल में उलझ रहा था, ये साम्य भाव नहीं था, नहीं तो ये कहने का क्या मतलब अब मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। अरे तुम तो तीर्थंकरों की स्तुति कर रहे थे तो साम्य भाव को ही तो प्राप्त थे कि नहीं, मैं समझता हूँ शुभ भाव था। वो साम्य भाव शुभ भाव नहीं है, वो क्या है वो अपना आगे आगे वहां तरफ बढ़ेंगे अब आगे। और आश्रम में जाता हूँ, एक घर को छोड़ता हूँ, तो कौन आश्रम कौन सा है? तो फिर लोग ये ना समझ लें, क्योंकि लोगों की समझदारी की बात समझ में आ गई थी ना, क्योंकि वो कुंद कुंद का आश्रम कौन सा है था जिसमें वो गए थे, हमें बताओ कि नहीं है। कहाँ था? पन्नूर हिल में था। कोई बात नहीं है, अभी नहीं है, मिट मिटा गया है, काल का काल सबको खा जाता है। तुम कहो मैं जैसा आश्रम बनवा दूं, एकदम अटैच लेटर बाथरूम के 108 रूम बनवा, घबराना नहीं। मैं किसी की कोई बात नहीं करता हूं। कुंद कुंद के आश्रम की कल्पना यदि वो अपनी स्पष्ट नहीं करें तो न मालूम तुम कैसी कैसी कल्पना कर लो, तो उसका पता ही नहीं। इसके नीचे एक मंदिर, मंदिर फिर इतने से उसके दूसरा, उसके उसको नीचे तीसरा, उसका तीसरा, ऐसा इधर 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 कहाँ कहाँ से निकालते हैं। कभी कभी तो मैं अपने पंडितों से कहता हूँ, विद्यार्थियों से, कि भैया तुम त्रिकाली ध्रुव पर मैं तुम्हारा प्रवेश कराया था, तुम्हारा समझाते समझाते और तुम ये कहाँ भटक गए है? कि त्रिकाली ध्रुव में रहो, उसकी बात करो, उसी महिमा समझो। तो उन्होंने बता दी कि वो आश्रम सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र का बना हुआ है ना? मैं उस आश्रम में जाता हूँ और साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। ये सबसे बढ़िया चीज होगी कि हाँ बिल्कुल सबसे बढ़िया चीज है, जो मैंने अभी तक की उस सब को छोड़ के अब मैं साम्य भाव में जाता हूँ। तो उन्होंने कहा तो हमें तो अब यही समझा दो कि साम्य भाव क्या है। पढ़ो छठवीं गाथा। संपद्य दिन बाणम देवासुर मनोय राय बिबे जीवस्य चरित्रादो दंशन राण पहाड़ो। ये गाथा और पढ़ लो साथ में, सुविधा रहेगी। चारित्रम खलु धम्मम मोतिने दिठो हो अखो हेणम प्रणामो अपणो हुसमो। क्योंकि मैं उस समता भाव को और आश्रम को दोनों को एक साथ व्याख्या करना चाहता हूँ, तो वो समूह है ना वहाँ, इसलिए मैं वहाँ तक गया हूँ। नहीं ना निर्वाण पावे सुर असुर नर राज के वैभव सहित यदि ज्ञान दर्शन पूरे बक चारित्र सम प्राप्त हो। आश्रम था ना, काय का था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का था ना। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक यदि सम्यक चारित्र प्राप्त हो तो हम उस आश्रम को प्राप्त हुए है? और फिर आगे कहेंगे मैं साम्य भाव को पाऊं, उस गाथा की अपन आगे चर्चा करेंगे। अब ये निर्वाण पावे सुर असुर नर राज के वैभव सहित, ये जीव जो आश्रम में आएंगे और साम्य भाव को प्राप्त होंगे वे मोक्ष पाएंगे और साथ में सुर असुर और नरराज का वैभव भी पाएंगे। माने चक्रवर्ती का वैभव, असुर का वैभव, और सुर माने चक्र इंद्र और असुरेंद्र, इन सब के वैभव, सौंद्रों के वैभव पाएंगे और अंत में निर्वाण जाएंगे। तो ये बात तो नहीं समझ में आई कि बहुत ऊंची ऊंची बात करने वाले थे। अब उसी से तो मोक्ष पाएंगे और उसी से चक्रवर्ती बनेंगे और उसी से सौधर्मेंद्र बनेंगे और उसी से असुरनाथ भी बनेंगे। असुरनाथ समझ में आ गया ना, कल परसों बताए थे ना। क्यों अभी अपन ने समझाते समझाते कि 16 इंद्र की बोली लगाते हैं ना, तो इंद्र फिर एक चक्रवर्ती की लगा देते। अब आजकल लगने लग गए राजा के ना चक्रवर्ती की लगा दें तो फिर असुरेंद्र की भी लगा दें। कब ऐसा हो जाए कि इंद्र से ज्यादा असुरेंद्र की चली जाए बोली, क्या? अरे भैया वहां मर के सम्यक दृष्टि नहीं जाते, वो ऐसी जगह है। तो उनका नाम यहां काय को रख दिया, इसलिए रख दिया कि हमें 100 इंद्र पूरे करने थे, कि उनको 100 इंद्र नमस्कार करें तो त्रिलोक पूज्य कहलाएंगे। यदि हमारा कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा जैनी में से, तो वो अकेले जैनियों का प्रधानमंत्री बनेगा, जैनियों के देश का, कि हमारे 125 करोड़ जो क्या 125 अरब जनता है उनका प्रधानमंत्री बनेगा, सभी का बनेगा, तो सभी को मान्य होना चाहिए ना। तो अब वो यहां कह रहे हैं कि निर्माण पावे और इनके वैभव के साथ। अब एक बात जरा रतंजन साहब का चार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें 5-7 छंद ऐसे आते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव मर के कहां नहीं जाता, ये तो आपको याद होगा। नारक त्रेंज पुंसकत्वानी आता ना, सम्यक दृष्टि जीव मर के नहीं जाता, और कहां कहां जाता है ये भी छंद है। चक्रवर्ती होता है, इंद्र होता है, इसके छंद अलग हैं। और फिर अंत में लिखा गया इनको पाकर इनको छोड़कर फिर शुभम मोक्ष चला जाता है। देखो बिल्कुल जो ये बात यहां लिखी, राकेश जाके मिलान करके देखना, समंत भद्र 1900 वर्ष पुराने, कुंद 2000 वर्ष पुराने आसपास के ही हैं, सैकड़ों वर्ष का फर्क नहीं था, दशाब्दी मना कम 100 वर्ष से कम का ही फर्क होगा कुंद में और समंत भद्र में। वो समंत भद्र ने भी वही बातें लिखी, यहां जाते हैं और यहां नहीं जाते हैं। सम्मत दर्शन ज्ञान तार्थ से सीधे मोक्ष जाते हैं, ये तो चक्कर चल रहा था। अब हम तुम्हारे अध्यात्म की सभा में आकर के वे चक्रवर्ती होते हैं, वे ये होते हैं, अब ये नई बीमारी और लगाएं। तो इसमें लिखा है, आप पढ़ोगे तो सब मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। लेकिन मैं अभी एक एक बात को पढ़ के सुनाऊंगा तो मुझे मजा नहीं आता, आपको आता कि नहीं आता, इसलिए मैं याद कर लेता हूं और वो सुनाता रहता हूं। इतनी सी बात है, बात सब इसमें लिखी है कि ये चक्रवर्ती होते, ये होते, ये होते, ये क्यों लिखा? हमें नहीं होना, हम तो एक कह दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नहीं लुभाऊं, रागादि के दोष हरिजे, पर माता में निज पद दीजे। क्लियर लिख दिया हमने, हमें नहीं चाहिए। फिर बेगत हम क्या करें, मिलता है तो उन्हें मिलते हैं ना, हुए हैं ना बहुत से हमारे जीव। अपना महावीर का जीव भी मानो, पहले नारायण भी हुआ है, चक्रवर्ती भी हुआ है, पहले भवों में कई चीज, भव में कई चीजें मिलने लेके आया है। तो ये कि बे कहते हमें नहीं चाहिए, कि तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मत लेना, लेकिन होता है तो हम क्या करें, हम तो वो बताएंगे। तो इनने इसमें कहा, क्या कहा कि चारित्र दो प्रकार का होता है, सराग चारित्र, वीतराग चारित्र, इसमें निकाल के बताऊं? निकाल लेना। दूध प्रकार का होता है। अब एक पंक्ति इसमें लिखी है, ये लिखी है कि ये सराग चारित्र, वीतराग चारित्र दोनों चारित्र सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। ऐसा मत लगा लेना सराग चारित्र मिथ्या दृष्टि के होता हो और वीतराग चारित्र सम्यक दृष्टि के होता हो। ये बात ख्याल में थी, इसलिए ये बात कर रहे हैं हम कि वो मिथ्या दृष्टि होता तो भवन त्रक के ऊपर जाता नहीं, इन पदों में जाता है। अब वो जो सम्यक दर्शन उसके है, क्या हो गया? देखो पुद्गल की महिमा। देखो मुझे बहुत उपयोग को स्थिर करके सब चीजें व्यवस्थित करने पड़ती हैं दिमाग में, और फिर धीरे धीरे शांति से मैं सुनाता रहता हूँ। अब ज्यादा मैं वो नहीं कर सकता ना, इसलिए किसी मुझे कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब हम क्या कह रहे थे, सराग चारे को वीतराग चारे का, तो जो वो जब मित्र संबंध जी तय हो गया और उसके बाद तत्काल तो हरेक आदमी वीतराग हो नहीं पाएगा। तो जब तक तो राग रहेगा उसके साथ में तब तक वो सराग चारे तो कह रहेगा, अनुभूत हो गया मान लो तो राग हो पंचम स्थान में दो दशाओं का अभाव हो गया तो उसमें चारित्र भी हो गया, फिर संयम सकल संयम हो गया। तो ये दोनों रहेंगे और इन दोनों के फल में यदि मैं ये नहीं कहता हूँ कि चक्रवर्ती इनमें पर जाता है तो फिर दोनों का फल मोक्ष होगा, अगर भी वो है नहीं प्रश्न आया समझ में, उत्तर समझ में आया क्या नहीं? यदि नहीं कहेंगे तो क्या दिक्कत होगी कि वो इतना जो राग हो विद्वान है मैंने उसने पांचवा गुणस्थान ले लिया, छठवा ले लिया, सातवें छठवें सातवें में आ गया। अब सातवें सातवें में आ जाने से जब लोग चला नहीं जाएगा फिर चौदह पार करने पड़ेंगे, और इतने पार करने वाला नहीं है पंचम काल में कोई, तो क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं यही जाएगा ना, यही होगा ना कहीं। वो जो दोस्त यहाँ पर हैं तो कहते हैं वो तो चक्रवर्ती होगा, इंद्र होगा, तो जो ऐसी पोस्ट हैं वो वहां जाएगा। इतनी इतनी दुष्ट है ये सब संबंधी ये चरित्र वाले वहां चले जाएंगे, इतने ज्यादा हो गए क्या? कितनी लगता इतनी पोस्ट नहीं है, कितनी तुम मानोगे कितनी? अरे निषेध किया है भवनवासी बंदरों दोषी नहीं होते हैं, क्योंकि बेईमानी होते हैं ना, अर्जन तो कितने हैं, लोकांतिक लोग कितने हैं, बहुत बहुत पद हैं। इसके बाद करोड़ों अरबों होगा कोई चिंता की बात नहीं है कि वो कहां जाएंगे कहां जाएंगे, चले जाएंगे। और अरे इतने पद हैं भाईराम को जाएगा, को धुने और को धुने, को धुने और को धुने, हम ऐसे पागल हो रहे हैं। तो मैं नैमीचंद काका थे विद्वान पंडित बहुत अच्छे प्रवचन गायक थे, तो वो सुनाया करते थे कि एक धुई की धुनने वाला था, तो दिन में वो एक दो रुपये धुनता था, दो धुई धुनता था तो उसके हाथ में बहुत दर्द होने लगता था, तो रात भर पत्नियों से दबावाता था और दिन भर बेचारा धुनिया ही धुनता था। वो बम्बई है तो वहां रुई के बहुत ढेर लगे देखे, बोले इतनी रुई को बने और को बने, इतनी रुई अब कौन बनेगा? वो तो समझता था मेरे सामने इतनी रखी कि खत्म हो जाएगी, शाम को मेरी छुट्टी हो जाएगी। अब वही इतनी रुई वो तो खत्म होने वाली है नहीं, तो घूमते ही रहना पड़ेगा तो मेरे को हाथों में दर्द होता है मैं कैसे ढूंढूंगा, तो धीरे धीरे वो पागल हो गया। और ये की बात है, कोई ढूंढे और कोई बुने, कोई ढूंढे और कोई बुने, कौन ढूंढेगा और कौन बुनेगा इसको। बहुत इलाज कराया ठीक नहीं हुआ, किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गया तो उसने पूछा कहां क्या हुआ था, तो उसने बता दिया। तो उसने क्या ऐसा करो कि जब जब सो रहा हो सुबह 5 बजे हूं तो एक अखबार लेकर के और उसमें छापा लो कि बम्बई के पूरी बाजार में आग लग गई और लाखों गांठें रुई की जल के खाक। जो उसने वो बात सुनी कहे खा दो गई और कोई चिंता की बात नहीं। तो दुनिया भी सारी रही अपने माथे धरने का चक्कर, तो इतने जगह कहाँ जाएंगे समय दृष्टि दी और उतने जगह उन्हें कहाँ से आएंगे इतने समय दृष्टि दी, फिर तो क्यों फिक्र करता। तुम अपनी बात करना, तेरे लिए सब इंतजाम है, तेरे लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। तेरा स्थान नक्की है क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से, जहाँ तेरा जाना है वो तो नक्की हो, उसी के अनुसार तेरे परिणाम होंगे और उसी के अनुसार तू जाएगा। तो वो कहते हैं कि जो चारित्र तो वीतराग है, तो वीतरागी तो है। पहली शर्त लगाओ, ये किन की बात है। अपन क्या कहते हैं, शुभ भाव से बंद और शुद्ध भाव से मोक्ष। ये बहुत हल्का चिंतन है, हल्का है कि हाँ, क्योंकि एकदम एक गड्ढे में डाला, एक को एकदम ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो क्या शुद्ध भाव से भी थोड़े कर्म कर जाते हैं कि नहीं करते हैं। तो फिर क्या चक्कर है कि ये उनके शुद्ध भाव की बात है जिनके परिणति वीतराग। सुनो, दो चीजें होती हैं मोक्ष के साधन में, शुद्ध परिणति पर शुद्ध उपयोग, शुभ परिणति पर शुभ उपयोग, अशुभ परिणति पर अशुभ उपयोग। भागवत जी का भजन है ना, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, है ना। जावत शुद्धोपयोग न पावत ना ही मनोग, तावत ही कर्म योग कही पुण्य करनी, है भजन है ऐसा। अभी क्या बात चल रही है कि वो ये कह रहे हैं कि उपयोग समदर्शन हो गया, अनंतानंदी के साथ चली गई, एक चौकड़ी चली गई, मच्छा तो चला गया, उससे तो निर्मलता चारित्र गुण में प्रकट हुई, वो आ गई, श्रद्धा गुण निर्मल हो गया, ज्ञान गुण निर्मल हो गया। अब वो जीव दो में से एक में रहेगा, क्या शुद्ध में रहेगा, शुद्धोपयोग में रहेगा, क्या शुभोपयोग में रहेगा। कौन सा जीव आगे बोलो, जो परिणति जिसकी शुद्ध है तो वो जब वो शुभोपयोग में है तो मोक्ष मार्ग से गिर गया। जब मुनिराज छठवें साधने से छठवें में आ गए तो गिर गए। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही ना आपकी, कुछ नई बात कह रहा हूं मैं। अरे भाई, असली मुक्ति का मार्ग तो वो परिणति है। यहां पर इतने आदमी बैठे और एक आदमी की पास में करोड़ रुपये हैं, तो वो करोड़ रुपये है तो एक आदमी को करोड़ों की कमाई है तो करोड़ों का कर्ज है। क्यों करोड़पति है कौन है, वो करोड़ों का मालिक नहीं है ना। बैंक से करोड़ों रुपए ले लो के ले हैं, जो सारे जो मकान मकान बना दिए ना कल कारखाने, वे सब गिरवी रखे हैं और उनका ब्याज है, किस्तें चुकती हैं और करोड़ों की इनकम है, वैसे ही खर्चे जैसे सुबह शाम तक खर्च हो जाते हैं और एक के बाद नगर बिल्कुल करोड़ रुपए हैं। तो परिणति वाला वो जीवों का नगर है वो है, उतनी शुद्धि उसके पास एकदम है
पहले किसकी आई गई, आई गई हुई हो, पैदा हुई होगा, फिर असम में चला गया।
तो वो शुद्ध परिणति धर्म है जो उसके हमेशा मौजूद है।
तो जो जो मुनिराज है ना, अपन क्या समझते हैं कि आत्मा में चले गए, एकदम अंदर चले गए, और जरा से बाहर उपयोग आया, खाना खाने में गया, आहार में गया, उपदेश देने में गया, तो एकदम बिल्कुल गड्ढे में चले गए। फिर बिल्कुल महाराज हैं तो समय साल लिखने लग गए, तो पापी हो गए, पुण्य आत्मा हो गए, तो कर्म में चले गए। ऐसा नहीं है, तीन कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनको विद्यमान है, उतना धर्म निरंतर विद्यमान है, समझ गए ना। तो थोड़ा उपयोग में परिवर्तन हुआ तो उसे क्या फर्क पड़ता है, एक सम्यक सहायक सम्यक दृष्टि है, उसे अनंतानुबंधी कसाय नहीं है, मिथ्यात्व तो नहीं है, पर थोड़ा गुस्सा आ गया और ऐसा चक्र चला दिया भाई पे, तो क्या हो गया, अब मर जाता तो कैसे मर जाता, भाइयों पे चलता ही नहीं है, बहुत बारें लगी हैं, क्यों ये नहीं होता, वो कर्म खरीदी था, उसकी मोती आना चाहिए थी, नहीं वो नहीं मारते क्या, तो भाई क्या, तो बहुत क्षणिक था ना, दो आगे आगे पीछे तो नहीं रहा, पर तुम उसको लेके बैठ गए, और सारी जिंदगी में तो नेता चक्र चला दिया, चक्र चला दिया, चक्र चला दिया, अरे वो कर्म आश्रम कर्म नाश कर दिए, मोक्ष में चले गए, वो बातें ही नहीं करते, चक्र चला दिया, चक्र चला दिया, क्या हो गया, समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अभी तुम लोग मुझे कुछ चढ़ा दो, मुझे गुस्सा आ जाए, दस पांच गालियां मैं भी बक दूं, और मेरे कोई विद्यार्थी हो तो सांटा भी मार दूं, क्यों, तो मैं सब खत्म हो जाऊंगा, 80 वर्ष की मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, मैं जीरो हो जाऊंगा, क्यों, तो मैं फिर भी कुछ रहूंगा, फिर 5 मिनट बाद क्यों भैया तेरा गुस्सा आ गया था, माफ कर देना, मस्ती शुरू कर, क्या होगा बोलो, क्या होना चाहिए अपने हिसाब से, सोच लो तुम मेरे साथ चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन वही फिर भरत चक्रवर्ती के साथ करना पड़ेगा, कसौटी तो वही है ना, अपने घरों में नहीं हो जाता, माताओं बहनों को गुस्सा आ जाता है, बहू को गुस्सा आ जाता है, भाग जाती है, फिर अपन मना के ले आते हैं कि नहीं हो जाते हैं, बेटे को आ जाता है, क्यों होता है, तो क्षणिक गुस्से के भरोसे पर गृहस्थी नहीं चलती है तो मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा, तो गृहस्थी चलती है हमारा तो उसमें भी आने जाने वाली बजाओं के भरोसे नहीं होता है। तो देखो संपत यदि निबाणम देवासुर मणवे राय विवेहीन, देव देवेंद्र असुरेंद्र और मनुष्येन्द्र इन चक्रवर्ती इन वैभव के साथ वे मोक्ष को पाते हैं, तो फिर मोक्ष में ले जाते होंगे सब वैभव, अरे साथ माने जो भी जब तक मोक्ष में नहीं गए तब तक जो पर्याय है उनमें ऐसे पुण्य कर्मों का उदय आ जाता है बीच में, तो जो भी हो जाते हैं अपने कहलाने लगते हैं दुनिया की दृष्टि में, वो तो नहीं मानता, तो उसका सिद्धांत तो नहीं बदला है, तो उनने वो चीज गिनाई और साथ में लोगों ने ऐसा समझ लिया कि वो तो महाभ्रष्ट हो गया, नहीं हुआ महाभ्रष्ट हो, अरे कितना धर्म विद्यमान है उसके पास, समझे ना, कितनी चीज विद्यमान है, उस टेम्परेरी के आधार पर काम होता है या परमानेंट पे काम के आधार काम होता है। देखो अभी आप हो यहाँ पर लाए, लाइट का काम देखने के लिए एक इंजीनियर को लाए, और उसने बहुत बढ़िया लाइट की सारी व्यवस्था कर दी, और यहाँ वो बेसर नौकरी को छोड़ करके फ्री में छुट्टी लेकर ऐसे एक पैसा नहीं लेकर के और यहाँ आकर के बैठा है कि आपके किसी काम में कोई विघ्न नहीं खड़ा होने दे, है ना, ऐसा उसने अनंत उपकार अपन लोगों पर किया है, कोई उसे ज्यादा छेड़खानी करे और डांटने लग जाए तो उसे गुस्सा आ जाए, थोड़ा तो भी भनक जाए, तो सम्य दृष्टि तो है नहीं, तो वो ही भनक सकता है, और सम्य दृष्टि हो तो वो भी भनक सकता है, सम्य दृष्टि क्या कम भनकते हैं, घबराना
नहीं, क्योंकि वर्तमान के समय ऋषि वर्ण नहीं कह रहा हूं मैं तो शास्त्र में से निकाल निकाल के बता सकता हूं भरत जैसे कितने कितने भनक सकते हैं। तो आप सब उसको इंजीनियर को भगा दोगे, मैं आपको पूछता हूं, फिर वो गुस्सा करे गाड़ियां भी बचेगा तो मना के रखोगे, बोलो कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ही कदाचित किसी ज्ञानी धर्मात्मा को और वो जो बात कह रहा है कि गुस्सा आ गया कुछ हो गया, तो वो भी भूमिका के अनुसार ही आता है, क्योंकि उसके मर्यादा के बाहर तो आते ही नहीं है। तो शास्त्र में लिखा है और उसके उदाहरण भी हैं कि ऐसा आ गया था तो भी उनके साथ हमारी कैसी श्रद्धा, कैसा भाव होना चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए, तब हमें जाकर के उनका असली लाभ हमें प्राप्त होगा। ये सोचो है ना।